एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो अक्सर सिर्फ बड़ी खबरों या अंतर्राष्ट्रीय बैठकों तक ही सीमित सा लगता है, लेकिन सच तो यह है कि यह हमारी दुनिया के चलने के तरीके को समझने की एक बहुत अहम चाबी है। हम बात कर रहे हैं कूटनीति की, डिप्लोमेसी की।
बिल्कुल, मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान और आज हम इसी कूटनीति की दुनिया में हाँ थोड़ी गहराई तक उतरेंगे। ये सिर्फ नेताओं के हाथ मिलाने तक ही सीमित नहीं है। इसे समझने के लिए हम जाने माने इतिहासकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विद्वान जोसेफ एम सिराकूसा के विचारों और उनकी किताब डिप्लोमेसी से मिली सीख का इस्तेमाल करेंगे।
अच्छा, तो जोसेफ सिराकूसा, हाँ, इनका नाम कूटनीति के इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में काफी जाना माना है। एक प्रोफेसर के तौर पे इन्होंने दशकों तक पढ़ाया है और खासकर शीत युद्ध, परमाणु हथियार और अमरीकी विदेश नीति पर काफी कुछ लिखा है इन्होंने।
और उनकी खास बात यह है कि वो कूटनीति जैसे मुश्किल लगने वाले विषय को भी बड़े आसान तरीके से समझाती हैं। वो सिर्फ किताबी बातें नहीं करती, बल्कि असल दुनिया में ये कैसे काम करती है इसकी भी उन्हें अच्छी समझ है, क्योंकि उन्होंने सरकारी एजेंसियों के साथ भी काम किया है।
तो आज इस पे बात करना क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि आज की दुनिया में जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आतंकवाद है, क्लाइमेट चेंज है और अब तो डिजिटल दुनिया की लड़ाइयां भी हैं, तो ऐसे में देशों के बीच बातचीत करने, झगड़े सुलझाने और मिलकर काम करने का तरीका यानी कूटनीति, वो पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है।
सही कहा, तकनीक बदल गई, दुनिया बदल गई, पर जैसा सिराकूसा कहती हैं, कूटनीति का जो मूल मकसद है, शांति से हल निकालना, वो आज भी उतना ही जरूरी है। ये समझना दिलचस्प होगा कि वक्त के साथ इसका रोल, इसका मकसद कैसे बदला है, ताकि हम आज की चुनौतियों को बेहतर समझ सकें।
हाँ बिल्कुल, तो चलिए सिराकूसा के नजरिए से इस सफर पर चलते हैं। तो सिराकूसा, जैसा हमने कहा, एक सम्मानित प्रोफेसर हैं, आजकल ऑस्ट्रेलिया की RMIT यूनिवर्सिटी में ह्यूमन सिक्योरिटी और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पढ़ाते हैं। उनका काम सिर्फ इतिहास बताना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि अतीत की घटनाएं आज भी मायने क्यों रखती हैं।
बिल्कुल, वो सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझाती हैं कि कूटनीति में कोई चाल कामयाब क्यों हुई या कोई कोशिश नाकाम क्यों रही। वो इतिहास के एक बहुत लंबे दौर को देखती हैं, पुरानी इतालवी रियासतों से लेकर आज की साइबर डिप्लोमेसी तक, और उनके बीच के जो कनेक्शंस हैं उनको सामने लाती हैं।
अच्छा,
यही चीज उनके नजरिए को खास बनाती है, गहरी ऐतिहासिक समझ और उसे आसान शब्दों में बताने का हुनर।
तो उनकी किताब डिप्लोमेसी असल में किस बारे में है? क्या है इसका निचोड़, क्या है इसका सार?
देखिए, सिराकूसा का मुख्य तर्क ये है कि कूटनीति ही वो इंजन है जो देशों के आपसी रिश्तों को चलाता है। ये लगातार बदलता रहा है और अक्सर लोग इसे ठीक से समझ नहीं पाते। ये विदेश नीति का कोई साइड रोल नहीं है, बल्कि बातचीत, संपर्क और प्रतिनिधित्व के जरिए दुनिया के मामलों को संभालने की एक सक्रिय कला और प्रैक्टिस है।
हाँ, वो इस बात पर खास तौर पर जोर देते हैं कि कूटनीति और विदेश नीति ये दोनों एक नहीं है। विदेश नीति बताती है कि किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य क्या हैं, उसकी रणनीति क्या है, यानी क्या करना है।
बिल्कुल सही, और किताब का मकसद कूटनीति को आसान बनाना है, इसकी शुरुआत से लेके आज की दुनिया में इसकी कई तरह की भूमिकाओं तक। ये पूछती है कूटनीति आखिर है क्या, समय के साथ इसके तरीके, इसके लक्ष्य और इसे करने वाले लोग कैसे बदले हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आज जब कम्युनिकेशन इतना तेज है, देशों के अलावा भी कई ताकतवर ग्रुप्स हैं जैसे कि NGOs, और खतरे भी नए किस्म के हैं, तो क्या पुराने अंदाज की कूटनीति और राजनयिक आज भी उतनी ही जरूरी है?
और सिराकूसा का जवाब है, हाँ बिल्कुल है, कूटनीति पुरानी नहीं हुई है। आज भी ये दुनिया में व्यवस्था बनाए रखने, झगड़ों को जंग में बदलने से रोकने और इस उलझी हुई दुनिया में सहयोग बढ़ाने का सबसे अहम जरिया है। इसका रोल और मकसद आज भी बहुत महत्वपूर्ण है।
तो चलिए देखते हैं कि वक्त के साथ कूटनीति का ये रोल और मकसद कैसे बदला। कहानी शुरू कहाँ से होती है?
सिराकूसा बताते हैं कि शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी। पुराने मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस, रोम में भी दूध भेजे जाते थे।
वाह।
तब रोल बहुत सीधा था, संदेश पहुंचाना, दूसरी तरफ के राजा या शासक के सामने अपनी बात रखना।
अच्छा।
मकसद था संपर्क बनाए रखना, गलतफहमी दूर करना और छोटी मोटी संधियां करना, जैसे अमारना पत्र मिलते हैं जो पुराने मिस्र और उसके पड़ोसियों के बीच लिखी चिट्ठियां हैं। ये दिखाते हैं कि तब भी दूत की सुरक्षा और बातचीत के कुछ नियम बनने लगे थे।
फिर ग्रीस और रोम ने इसे थोड़ा और व्यवस्थित किया। ग्रीस राज्यों ने गठबंधन, तटस्थता, शक्ति संतुलन जैसे विचार दिए। रोम ने कूटनीतिक कानूनों की नींव रखी। मध्य युग में चर्च की भी अपनी कूटनीति थी, लेकिन बड़ा बदलाव आया पुनर्जागरण काल के इटली में करीब 15वीं-16वीं सदी में।
हाँ, वो दौर जब वेनिस, फ्लोरेंस जैसे शहर राज आपस में लगातार साजिशें करते रहते थे, तब उन्हें महसूस हुआ कि सिर्फ जरूरत पड़ने पर दूत भेजना काफी नहीं है, उन्हें दूसरी जगहों पर स्थायी रूप से अपने नुमाइंदे रखने की जरूरत है जो लगातार जानकारी भेजें, बातचीत करते रहें।
यहीं से स्थायी राजदूत मतलब रेजिडेंट एम्बेसडर का कॉन्सेप्ट आया।
बिल्कुल। तो कूटनीति का रोल अब सिर्फ संदेश ले जाना नहीं रहा।
हाँ, बल्कि स्थायी प्रतिनिधित्व, जानकारी जुटाना भी बन गया।
सही, जानकारी जुटाना और विश्लेषण करना भी। मकसद था अपने राज्य के हितों को साधना और दूसरों की चालों पर नजर रखना।
यहीं से कूटनीति एक पेशे के तौर पर विकसित होनी शुरू हुई।
इसके बाद एक और बड़ा मोड़ आया 1648 की वेस्टफेलिया की संधि से। इसने आधुनिक राज्य प्रणाली की नींव रखी, जिसमें माना गया कि हर राज्य अपने अंदरूनी मामलों में संप्रभु है।
इसने कूटनीति के रोल को और साफ कर दिया, मतलब राज्यों के बीच के संबंधों को संभालना। राजनयिकों को खास छूट मिली, जिसे डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी कहते हैं। बातचीत के तौर तरीके और औपचारिक हो गए।
हाँ, और मकसद था राज्यों की बराबरी के सिद्धांत पर व्यवस्था बनाए रखना और शक्ति संतुलन के जरिए बड़ी लड़ाइयों को टालना।
फिर 19वीं सदी में नेपोलियन युद्धों के बाद लगा कि सिर्फ दो देशों के बीच बातचीत काफी नहीं, कई देशों को मिलकर बात करनी होगी। यहीं से बहुपक्षीय कूटनीति, जिसे मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी कहते हैं, उसका विचार आया।
वियना कांग्रेस जैसी बैठकें हुई, कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप बना, जिसमें बड़ी ताकतें मिलकर मामले सुलझाने की कोशिश करती थी। तो कूटनीति का रोल अब द्विपक्षीय से बढ़कर बहुपक्षीय हो गया
और मकसद बन गया सामूहिक रूप से स्थिरता बनाए रखना।
लेकिन फिर आए दो विश्व युद्ध, जिन्होंने पुरानी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। पहले विश्व युद्ध को रोकने में पुरानी कूटनीति, वो नाकाम रही।
इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन जैसे नेताओं ने नई कूटनीति की बात की, जिसमें पारदर्शिता हो, गुप्त संधियां न हो और देशों का एक संगठन लीग ऑफ नेशंस मिलकर शांति बनाए।
हालांकि लीग ज्यादा कामयाब नहीं हुई, पर विचार नया था।
हाँ, बिल्कुल। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस बना।
सही।
अब कूटनीति का रोल वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए संस्थागत ढांचे बनाना और चलाना बन गया।
और मकसद हो गया सामूहिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
फिर आया शीत युद्ध का दौर।
हाँ, वो तो एक अलग ही दुनिया थी।
दुनिया दो खेमों में बट गई, अमेरिका और सोवियत संघ। कूटनीति अब विचारधारा की लड़ाई का मैदान बन गई। यहाँ जबरदस्ती की कूटनीति यानी कोअर्सिव डिप्लोमेसी जैसी चीजें सामने आईं, मतलब धमकी या सीमित बल का इस्तेमाल करके दूसरे को अपनी बात मनवाना।
क्यूबा मिसाइल संकट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना, जहाँ कूटनीति ने परमाणु युद्ध टाल दिया।
बिल्कुल। यहाँ कूटनीति का रोल बहुत तनावपूर्ण था, दुश्मनी भी निभानी है और महाविनाश भी टालना है। मकसद था अपने खेमे के असर को बढ़ाना और परमाणु युद्ध से बचना।
और अब हम आते हैं आज के दौर में। शीत युद्ध खत्म हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, दुनिया ज्यादा जुड़ गई, लेकिन नई चुनौतियां आ गईं।
हाँ, आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज, साइबर हमले, बहुत कुछ।
अब कूटनीति सिर्फ सरकारों के बीच नहीं होती, आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, जिसे पब्लिक डिप्लोमेसी कहते हैं।
सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ट्रिप्लोमेसी, ट्विटर डिप्लोमेसी।
हाँ, और एनजीओ जैसे गैर सरकारी संगठनों से निपटना भी इसका हिस्सा है। तो आज कूटनीति का रोल बहुत फैल गया है, बहुत जटिल हो गया।
और मकसद है इन नई साझी चुनौतियों से निपटना और इस बिखरी हुई दुनिया में भी सहयोग के रास्ते खोजना।
वाह, तो ये पूरा सफर दिखाता है कि कैसे कूटनीति का रूप बदला, उसका दायरा बढ़ा, लेकिन शायद उसका जो मूल काम है वो बना रहा।
हाँ, बिल्कुल।
सिराकुसा के विश्लेषण से और क्या मुख्य बातें या संदेश निकलते हैं?
सबसे पहली और जरूरी बात मेरे ख्याल से यही है, बदलाव के बीच निरंतरता। तरीके बदले, माहौल बदला, खिलाड़ी बदले, लेकिन कूटनीति का जो बुनियादी काम है, मतलब अलग अलग सोच और संस्कृति वाले लोगों या देशों के बीच बातचीत करना, झगड़ों को शांति से सुलझाना और आपसी फायदे के लिए रिश्ते बनाना, ये जरूरत हमेशा बनी रही। इसका असल मकसद शायद झगड़े खत्म करना उतना नहीं है जितना उन्हें बढ़ने और हिंसा में बदलने से रोकना है। ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है।
दूसरी बात जो उभर कर आती है वो है कूटनीति का एक पेशे के तौर पर विकास। ये अब कोई पार्ट टाइम काम नहीं रहा कि जब जरूरत पड़ी किसी को भेज दिया, नहीं, अब ये एक खास हुनर है जिसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, अलग अलग संस्कृतियों की समझ चाहिए और संस्थागत ढांचा चाहिए।
सही बात है।
इससे कूटनीति ज्यादा असरदार हुई है और इसी से जुड़ी है ये बात कि कूटनीति ताकत और मनाने की कला का मेल है।
हाँ, ये दिलचस्प है।
बिल्कुल, राजनयिक की बात में वजन इसलिए होता है क्योंकि उसके पीछे उसके देश की ताकत होती है, आर्थिक, सैनिक, सांस्कृतिक।
सही।
लेकिन कूटनीति का असली जादू ताकत दिखाने में नहीं बल्कि मनाने में है। बातचीत, समझाते और सही कम्युनिकेशन से बिना जोर जबरदस्ती के अपना काम निकाल लेना।
ये बड़ा बारीक काम है ना?
हाँ, बहुत। और तीसरी अहम बात है सांस्कृतिक समझ का महत्व। सफल कूटनीति के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि दूसरा पक्ष दुनिया को कैसे देखता है, उनकी बात करने का तरीका क्या है, उनके लिए क्या चीजें मायने रखती हैं। कई बार बड़ी बड़ी गड़बड़ियां सिर्फ इसलिए हो जाती हैं क्योंकि एक पक्ष दूसरे की संस्कृति या भावनाओं को समझ नहीं पाता। जैसे हमारे देश भारत में ही इतनी विविधता है, हम रोज देखते हैं कि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के बीच समझ कितनी जरूरी होती है। देशों के बीच तो ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है।
हाँ, और इसी से जुड़ा है बहुपक्षवाद का बढ़ता महत्व। आज दुनिया की समस्याएं इतनी बड़ी और उलझी हुई हैं कि कोई एक देश अकेले हल नहीं कर सकता, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, महामारी हो या आतंकवाद।
बिल्कुल।
इसलिए यूएन, G20 जैसे मंचों पर मिलकर काम करना जरूरी हो गया है। यहाँ कूटनीति का रोल और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, इतने सारे देशों के हितों में तालमेल बिठाना।
सिराकूसा की किताब में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इन विचारों को बड़े अच्छे से सामने रखती हैं। जैसे एक बड़ी दिलचस्प लाइन है, कूटनीति किसी और को आपकी बात मानने देने की कला है। डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ लेटिंग समवन एल्स हैव योर वे। ये सुनने में थोड़ा चालाकी भरा लगता है।
हाँ, लगता तो है, लेकिन इसका मतलब गहरा है। ये बताता है कि सफल बातचीत में अक्सर ऐसे हल निकालने पड़ते हैं जिससे लगे कि सबकी जीत हुई है, जबकि आप अपने मुख्य लक्ष्य हासिल कर लें।
अच्छा,
ये सीधे सीधे मैं जीता तुम्हारे वाला खेल नहीं है, इसमें सामने वाले की इज्जत का ख्याल रखना भी जरूरी होता।
एक और जरूरी बात वो कहते हैं, कूटनीति का सार खतरे से बचने में नहीं बल्कि ये समझने में है कि टकराव से बेहतर समझौता है।
The essence of diplomacy lies not in the avoidance of danger, but in the recognition that accommodation is preferable to confrontation.
ये बहुत अहम है।
कूटनीति का मतलब ये नहीं कि खतरा या मुश्किल है ही नहीं है, बल्कि ये है कि मुश्किलों और असहमतियों को बिना लड़े भिड़े सुलझाने की कोशिश करना ज्यादा समझदारी है।
सही।
कूटनीति डरपोक होने की निशानी नहीं, बल्कि हिम्मत और हुनर का काम है, टकराव के बजाय समझौते का रास्ता चुनना।
तकनीक के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा है ना?
की जरूरत होती है।
टेक्नोलॉजी कैन सर्टनली चेंज द स्पीड एंड स्कोप ऑफ डिप्लोमेसी, बट नॉट इट्स फंडामेंटल नेचर एज अ ह्यूमन एक्टिविटी रिक्वायरिंग ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस।
आज के जमाने के लिए बिल्कुल सटीक बात है। ईमेल, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया से बातचीत तेज हो गई है, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है।
लेकिन आखिर में तो बात इंसानों के बीच ही होती है। भरोसा बनाना, दूसरे की बात समझना, धीरज रखना, ये चीजें टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती।
सही कहा, ये आज भी उतने ही जरूरी है।
और एक आखिरी विचार, राजनयिक का सबसे बड़ा हुनर ये जानने में नहीं है कि क्या कहना है, बल्कि ये समझने में है कि दूसरों को क्या सुनने की जरूरत है।
The diplomat's greatest skill is not in knowing what to say, but in understanding what others need to hear.
क्या बात है?
ये फिर से वही बात आ गई, सहानुभूति और समझ। सिर्फ अपनी बात कह देना काफी नहीं है।
नहीं, ये समझना पड़ता है कि सामने वाला किस मनस्थिति में है, उसकी चिंताएं क्या हैं और हमारी बात उस तक कैसे पहुंचेगी।
ये सुनने में आसान लगता है, पर करने में बहुत मुश्किल है।
तो ये सारी बातें तो हो गईं देशों और सरकारों के स्तर की, लेकिन क्या इन सिद्धांतों का हमारी आम जिंदगी में भी कोई मतलब है? क्या हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कूटनीति का इस्तेमाल कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं। आप सोचिए, ऑफिस में अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करना पड़ता है।
हाँ।
कभी कोई असहमति होती है, कोई मुश्किल प्रोजेक्ट आता है।
हाँ।
वहां पर भी तो यही हुनर काम आते हैं, सामने वाले की बात ध्यान से सुनना, अपनी बात शांति से रखना, बीच का रास्ता निकालना और ऐसा हल खोजना जिससे सबका काम बन जाए और रिश्ते भी खराब ना हो।
हाँ, ये तो है।
ये सब कूटनीतिक सोच ही तो है।
हाँ, और घर परिवार में दोस्तों के बीच भी तो यही होता है। कभी कोई मनमुटाव हो जाए तो चिल्लाने या लड़ने के बजाय अगर हम शांति से बात करें, दूसरे के नज़रिए को समझने की कोशिश करें और कोई ऐसा समाधान निकालें जिससे किसी को ये न लगे कि उसकी हार हुई है, तो रिश्ते बेहतर बने रहते हैं।
ये भी तो एक तरह की निजी कूटनीति है।
सही। इसके अलावा दुनिया में क्या चल रहा है उसे समझने में भी यह सोच मदद करती है। जब हम अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं तो सिर्फ हेडलाइन देखकर गुस्सा या उत्साहित होने के बजाय हम ये सोच सकते हैं कि इस मामले के पीछे क्या इतिहास है, अलग अलग पक्षों के क्या हित जुड़े हैं, बातचीत क्यों अटकी हुई है।
बिल्कुल, इसे हमारी समझ गहरी होती है।
तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सिराक्यूसा के विश्लेषण से सबसे अहम सी क्या मिलती है आपको?
में से एक है, और आज की तेजी से बदलती उलझी हुई दुनिया में सहानुभूति, दूसरों की संस्कृति को समझना, धीरज से बातचीत करना और मिलकर समस्याओं का हल निकालना, ये गुण सिर्फ देशों के लिए नहीं बल्कि हमारी अपनी जिंदगी की मुश्किलों को संभालने के लिए भी बहुत कीमती हैं।
मैं सहमत हूँ, और मेरे लिए एक और बात अहम है कि कूटनीति का असली कमाल शायद झगड़ों को हमेशा के लिए मिटा देने में नहीं है, बल्कि उन्हें वक्त रहते संभालने और बड़ी तबाही में बदलने से रोकने में है।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
ये पर्दे के पीछे लगातार चलने वाला एक जरूरी काम है जो दुनिया को जोड़े रखता है, और ये भी देखना दिलचस्प है कि ये जरूरत के हिसाब से कैसे खुद को बदलती आई है, पुराने जमाने के दूतों से लेकर आज की डिजिटल दुनिया तक।
अंत में सिराक्यूसा हमें याद दिलाती हैं कि कूटनीतिक सोच, जिसमें अलग अलग नजरियों का सम्मान हो, शांति से हल निकालने की इच्छा हो और लंबे समय के रिश्ते बनाने पर ध्यान हो, ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए नहीं बल्कि हमारी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी है। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं बल्कि भविष्य का एक अहम हुनर है। ये दिखाता है कि जो सिद्धांत देशों के बीच शांति ला सकते हैं, वही हमारे अपने समाज और रिश्तों में भी मेलजोल बढ़ा सकते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।